Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित खबरें लेकर हाजिर हैं और आज हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए फोन पर जुड़े हुए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। हरवीर जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी धन्यवाद।
और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है वैभव।
We begin with the headlines. Domestic benchmark indices end in red for fifth straight session. Sensex closes at 73,886. Nifty settles at 22,489. Income of Reserve Bank of India surges 17% during 2023-24, says RBI annual report. And S&P outlook on India economy becomes positive after 10 years.
घरेलू शेयर बाजार लगातार पांचवें सत्र में लाल निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 73,886 और निफ्टी 22,489 पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बैंक की आय 17% बढ़ी और एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी लगातार पांचवें सत्र में आज लाल निशान के साथ बंद हुए। वैश्विक बाजारों से प्राप्त हुए नकारात्मक संकेतों से गिरावट आ रही है। इसके अलावा बढ़ी हुई अस्थिरता की स्थिति भी बाजार में लगातार सुस्ती होने के पीछे एक बड़ा कारण है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 617 अंक यानी 0.83% लुढ़क कर 73,886 पर जाकर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 216 अंक यानी 0.95% नीचे आकर 22,489 पर पहुंच गया। बीएससी के विस्तृत बाजार में आज मिड कैप में 1.21% की सुस्ती देखी गई और स्मॉल कैप सूचकांक 1.33% नीचे आ गया।
The domestic benchmark indices Sensex and Nifty fell for the fifth straight session, while weak global cues aid the fall. Heightened volatility acts as a major force behind the consistent falling of the markets. The BSE Sensex shed 617 points, or 0.83%, to close at 73,886. The NSE Nifty dropped 216 points or 0.95% to settle at 22,489. In today's trade, 120 stocks recorded their 52-week high. 53 stocks hit their 52-week low. Further, 218 stocks traded in upper circuit while 303 hit the lower circuit. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 1.21% while the small-cap index down by 1.33%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 23 companies appreciated, 7 companies declined. ICICI Bank 1.1%, Axis Bank 1% and HDFC Bank 0.7% were the top 3 gainers. On the other hand, Tata Steel 5.7%, Titan 3.17% and Tech Mahindra 3.15% were 3 major laggards today. In sectoral indices at the BSE except BankX, which gained 0.5%, all 19 sectors registered losses. Metal sector declined 2.65%, consumer durables and commodities by 2%, information technology by 1.97%. The overall market breadth was negative. Out of 3,917 companies, the shares of 1,190 companies advanced, 2,622 declined and 105 remain unchanged.
Harvir ji, ek bar phir se karyakram mein aapka bahut bahut swagat hai.
जी
हरवीर जी, आज बाजार को अगर देखें तो लाल निशान के साथ बंद हुआ और ये लगातार पांचवा सत्र था। हालांकि वैश्विक बाजारों से जो संकेत मिले हैं उनको तो एक बड़ा कारण माना ही जा रहा है। आपके अलावा इनके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या कारण हो सकते हैं?
अब देखिए, जो वैश्विक संकेत हैं वो अपनी जगह है। हालांकि आज पॉजिटिव खबर थी कि S&P ने इंडिया की जो रेटिंग है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया 10 साल के बाद, ये एक बूस्ट होना चाहिए था
जी।
बट मार्केट लग रहा है कि जो अभी लोकसभा चुनाव का जो माहौल है उसके ग्रिप में जाता दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसका सेंटिमेंट मार्केट को प्रभावित कर रहा है
जी। इसमें अभी एक चीज, अगर आंकड़ों की हम बात करें तो 27 मई को सबसे उच्चतम स्तर पर सेंसेक्स गया 76,009 अंक तक पहुंचा और निफ्टी भी 23,110 तक गया था, उसके बाद ये नीचे आता जा रहा है। तो ये गिरावट आपको लगता है कि भी और होगी या फिर स्टेबिलिटी आने की कुछ उम्मीद है?
देखिए, अगर हम अपने जो इकोनॉमी के जो नंबर्स हैं उन्हें देखें तो फंडामेंटल्स आर गुड। RBI ने अभी जो है अगले साल के लिए भी जो करंट फिस्कल है 7% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन दिया, पिछला हमारा ग्रोथ 7.6 था। तो ये लगातार 3 साल हम लोग 7% की ट्रेजेक्टरी में हैं, तो एक तो ये पॉजिटिव बात है। इन्फ्लेशन भी काफी हद तक कंट्रोल है, लेकिन एक तो लगातार एक SIs की सेलिंग जो आई है और शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी है, क्योंकि इतने ऊंचे पर मार्केट गया और लोगों को जो वैल्यू है स्टॉक्स की वो लगता है कि उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम है, वो फैक्टर उसके पीछे है। मुझे लगता है कि अब भी थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट फेज इलेक्शन का आ रहा है, आज कैंपेनिंग खत्म हुई है लास्ट फेज के लिए, तो ये हमें 4 तारीख तक कुछ इस तरह की चीजें जब नतीजे आएंगे चुनाव के, तब तक हमें थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को लगातार मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।
हरवीर जी, यूजली एज यू वुड हैव रेड द वेरियस इलेक्शंस दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, व्हाट यू थिंक दिस काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी और दिस काइंड ऑफ movement which is being seen in the market right now, it is very normal or is it something unusual that are we seeing?
More or less it is the normal thing around when there is a political scenario becomes a consideration for market, so then we see that kind of volatility. But this volatility is not very alarming or very high even without the Lok Sabha election. Even previous in few months we have seen that kind of volatility in the market, but there are factors around that, the global factor, geopolitical issues, and some profit booking are also behind that. But definitely sentiments become very important when national election is happening and all kind of prediction and people talks around that. But overall Indian economy will remain stable whichever dispensation comes, because the direction our policies, economic policies have, that will remain continue, and that is always on basically market dominant economy.
Absolutely, sir. So it means that stability is the word that we should be focusing on right now, and the jitters whichever there are or wherever there are in any sectors or the minds of investors, they need not worry, because this kind of volatility is actually usual, as you are saying. So my next question would be upon RBI. RBI has had record earnings this year. It has transferred a huge sum to the central government. RBI, on the other hand, has also done very well in curbing many regulations so that the markets, especially the markets which are related to payment banks, are regulated and the investor money is safeguarded. What do you think happens to the investor mindset when we see RBI in action and gaining in its incomes and revenues sector after quarter after quarter?
See, this is the responsibility of the regulator, whether it is RBI or SEBI or any other regulator, to protect the investor's interest. And
absolutely,
I think our regulators are playing very important role for that, to protect the interest of the investors and to take action whenever it is needed. We have seen in the past right time action by the regulator basically to safeguard the investors.
वीर जी, अभी अगर आज की स्थिति की हम बात करें या हाल फिलहाल की स्थिति की बात करें, तो ग्लोबल स्तर पर इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ ही अमरीकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद है, तो आपको क्या लगता है इसका असर पॉजिटिव इंडिया पर होगा या नेगेटिव जाने की कहीं संभावना आपको नजर आती है?
देखिए, जो फेड रिजर्व है वहां पर सबकी नजर रहती है, दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि जो फ्लो है मनी का वो काफी कुछ डिसाइड होता है कि फेड किस तरीके का डिसीजन लेता है। और फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को जो कर्व करना चाहता है वहां, इसीलिए लगातार आप देखेंगे कि इंटरेस्ट को रेट को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन उन्होंने नहीं लिया रिड्यूस करने के लिए। सो वी हैव टू वेट कि किस तरीके का वो कॉल लेते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो दैट इज गुड फॉर अस, बिकॉज देन इन्वेस्टर लुक्स अबाउट द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड हमारा मार्केट उसके लिए अगर अच्छा रिटर्न देने वाला होगा तो यहाँ पर फंड्स का फ्लो बढ़ जाएगा हमारे मार्केट में।
जी, अभी एक चीज आरबीआई के इससे संबंध में आपसे पूछना चाहूंगा। आरबीआई का एक बड़ा बयान है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस जो हैं इसमें तकनीक को अपग्रेड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसका आपको फायदा नजर आता है?
बिल्कुल, देखिए जब हम जहां एक्शन लेना है और उसका कोई भी डेवलपमेंट है उसके ऊपर नजर रखना है तो, और लिक्विडिटी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू बेसिकली बूस्ट द ग्रोथ, दोनों जगह उसके मायने हैं लिक्विडिटी के। तो ऐसे में टाइमली एक्शन एंड राइट एक्शन विद बेस्ड ऑन राइट इन्फॉर्मेशन इज वेरी गुड एंड वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ए रेगुलेटर।
Harveer ji, talking about the retail markets here, RBI has recently said that on the RBI official app, trading in bonds has been allowed. What do you think this will have a consequence in the retail market in a positive way, and investors should look forward to it as the trading in retail market should see an upward trend because of this?
Actually, we are seeing decisions from RBI and SEBI, particularly to safeguard the interests of the small investors as well as to give them opportunity to get better terms and to take right decision at the right time, and these steps are only in that direction.
Ji Harveer ji, वापस अगर मार्केट में हम आए तो बीएससी के विस्तृत बाजार में मिड कैप में सुस्ती देखी गई, स्मॉल कैप में भी सुस्ती नजर आ रही है, तो ये नॉर्मल इसे माना जा सकता है या ये भी वैश्विक बाजारों से ग्रसित मान सकते हैं इसे?
एक्चुअली देखिए, मार्केट में एक तो होता है कि जो हाई वैल्यू जो स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप में तो वहां पर कई बार बहुत कॉस्टली हो जाता है इन्वेस्ट करना, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टर्स जाते हैं। लेकिन इस तरह जब मार्केट जब करेक्शन कर रहा है तो उस वक्त इन्वेस्टर कॉशियस हो जाता है, इसलिए हमें जो ये दो सेगमेंट है उनमें उस तरह की सुस्ती देखने को मिलती है।
Harveer ji, as you were just talking about the corrections in the market, there were recently a froth clearing session, or rather I should say that the biggest losers were the small cap indices, and we saw billions of dollars being wiped out across the global markets from not just India but also other markets in the continents. Do you think any such kind of froth clearing or corrections could also take place again in the near future, or now after this one particular correction that thing has been settled for now?
You see, in small caps, those who are the investor, sometimes they don't see the fundamentals of the particular companies, because stocks are available at a low price. So in the expectation to get better return on that in a short period, investors go and buy that kind of a stock. But sometimes they don't thoroughly check the company's balance sheet and the future prospects and the business of the company and the profit. So that hurts the investors, whether it is in our market or any other market globally.
All right. Sir, recently it was forecast by the Reserve Bank of India, by Goldman Sachs, and now by S&P that the economy is bound to grow at a faster pace than it was expected. Also, we are seeing that there has been a record high of foreign exchange reserves that we are keeping. What do you think? This will also impact the share market in a positive way in the coming days?
See, when we have good prospects of the economy and fundamentals are good, it always goes for the benefit of the market. And definitely we have very good forex reserve at a record level. That basically brings a good strategy by the regulator for exchange rate for the domestic currency. So So we have sufficient dollars. So, and to stabilize the currency rate is also important for us. Because whenever we import, so we have to spend more money. If our currency is stable and strong, then when we import some essential things, we import less inflation. If currency is weak, then we spend more. But at the same time, our some exports also become lower at that time. So it is a very delicate balance on the exchange rate. And in that case, if we have very good reserve of foreign currency, that helps to make the right decision at the right time.
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.40 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में गिरावट के साथ 104.48 पर कारोबार कर रहा था। हरवीर जी, मानसून समय से पहले केरल पहुंच चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये हमारे लिए, आपके क्या विचार हैं इस पर?
देखिए, ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है कि मॉनसून जो नियत तिथि थी उससे दो दिन पहले आया है और सामान्य मॉनसून का प्रेडिक्शन किया है आईएमडी ने। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मॉनसून की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि जो हमारा गैर सिंचित क्षेत्र है 50% के करीब वेरिएबल लैंड का, वो मॉनसून पे निर्भर करता है। प्लस मॉनसून की बारिश से हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है और खरीफ का जो प्रोडक्शन है वो मॉनसून बेहतर होने से अच्छा प्रोडक्शन होता है, रबी के लिए भी बेहतर स्थिति बनती है और से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है, रूरल इकोनॉमी तो स्ट्रेंथन होती है, प्लस वहां से पूरी इकोनॉमी के लिए डिमांड निकलती है। तो नॉर्मल मॉनसून और उसका समय पे आना, इट इज वेरी गुड टाइम एंड वेरी गुड फॉर आवर इकोनॉमी।
जी, अभी इसी से जुड़ी अगर एक इसी से जुड़ा एक प्रश्न आपसे पूछूं, शुगर के क्षेत्र में भारत की जो स्थिति है काफी मजबूत देखी जा रही है और मॉनसून से जुड़ी हुई अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके हम देखें तो हमने जो तमाम चीजें सोच रखी हैं, देश ने जो तमाम चीजें सोच रखी हैं खासतौर पर एथनॉल ब्लेंडिंग के लिहाज से, तो आपको क्या लगता है कितना फायदेमंद होने जा रहा है ये सत्र?
देखिए, अगर हमारा गन्ने का उत्पादन बढ़ता है, जो इस साल जो, मतलब पिछले साल जो क्रशिंग सीजन अभी चल रहा है जो सितंबर तक हम उसे मानते हैं
जी,
उसमें हमारा प्रोडक्ट कम रहा क्योंकि थोड़ा मॉनसून की जो बारिश थी देश के कुछ हिस्सों में कमजोर रही थी। तो सामान्य मॉनसून रहेगा तो गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा और उसका हम जो प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए, उसमें जो पेट्रोल का परसेंटेज है
जी
बढ़ाने का, उस लक्ष्य की तरफ हम लोग जा सकेंगे। क्योंकि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो अवेलेबिलिटी है एथेनॉल की, उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो शुगर इंडस्ट्री से आता
जी।
और क्योंकि हमारे लिए फिजिबल भी है, देश के बहुत बड़े हिस्से में गन्ने की खेती होती है और हमारा चीनी उत्पादन से ज्यादा हम उत्पादन कर रहे हैं खपत के हिसाब से, तो खपत के अलावा जो चीनी बचती है उसको हम एथेनॉल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस बार हमने थोड़ा उसमें कमी की थी प्रोडक्शन कम होने से, लेकिन अगर सामान्य मॉनसून रहेगा तो एथेनॉल के लिए भी ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा उत्पादन से हम लोग ज्यादा एथेनॉल बना करके ब्लेंडिंग का कार्यक्रम जो है उसको आगे बढ़ा पाए।
जी हरवीर जी, टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज यू वर जस्ट मेंशनिंग, सो अ गुड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंबाइंड विद अ गुड स्ट्रेटजी ऑफ सेल्फ रिलायंस एज वी वर सीइंग इन द पावर सेक्टर और स्पेशली द ग्रीन पावर सेक्टर, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फैक्ट दैट वी आर कंटिन्यूसली aiming for the fact that self-reliance plays a huge role in different industries such as power, such as agriculture, such as defense. What do you see will be happening from a ministerial or a departmental point of view in the coming months or years?
See, this multi-pronged strategy, we are going for multiple options of energy now, particularly renewable and green energy. Earlier, we were depending on fossil fuel, whether it is coal or petroleum product, and we imports more than 80% of our requirement of petroleum product. If we have the capacity at the domestic level to produce more and more green energy like ethanol or even solar energy or wind, so we will compensate or we will offset a major factor of the requirement from our domestic production. On the one hand, it is good for environmental point of view. At the same time, our self-reliance also gets increased and our outflow of forex will go down, our dependence on import will go down. So it has all kind of positive factors. And it is good for the Indian economy. We are a growing economy. Our need of the energy consumption is continuously increasing. And if we are adding more and more domestic supply of energy through various sources, that is good for us.
So basically, the policy of self-reliance would be having a positive multiplier effect in the coming times. And to our listeners, we move over to our next story. The income of the Reserve Bank of India, RBI, in the financial year 2023-24 rose around 17% year-on-year due to significant rise in interest income from foreign securities, as per Central Bank's annual report released today. Interest income from foreign securities surged to ₹65,327.93 crore in financial year 24 as compared to ₹43,649.26 crore in the financial year 23, RBI said in an annual report. Income of the RBI, which consists of interest income and other income, surged to ₹2.76 lakh crore in the financial year 24 as against ₹2.46 lakh crore in the previous financial year. RBI had an expenditure of ₹64,694.33 in financial year 24, which was sharply lower than ₹1.48 lakh crore in the previous financial year. On May the 22nd, RBI Central Board of Directors had approved the transfer of ₹2.11 lakh crore as surplus to the government for financial year 2023-24. This is arguably the highest ever yearly surplus transfer to the government by the Indian Central Bank. The Central Bank said surplus transfer to government for financial year 23-24 is based on the Economic Capital Framework ECF adopted by the RBI on August 26, 2019. As per the recommendations of the Bimal Jalan Committee, the sharp jump in the surplus amount could be attributed to higher income from the forex holding of the Central Bank, among other factors. Harvirji, so many factors coming into play. The RBI's earning, the higher rate of foreign reserves that we are holding, greater regulations for investor protection. What do you think will be RBI's role even in the future? Because right now, RBI is playing a central, vital role to provide this surplus to the government, which can be used for so many factors in the country.
Yes, you see, RBI is the central bank and the regulator of the banking system in the country. And RBI has proven a very good regulator continuously to safeguard the interest of the industry as well as the safeguard of the interest of the consumer and basically account holder and all. At the same time, RBI also has made the record earning, and the surplus is decided to transfer to the government. This 2.11 lakh crore for 23-24 is really historic, and this is the highest level of transfer to the government, which will help the government on fiscal front very positively. The government will have money to spend for expansion program. It can go to use this money for capital investment. It can go to use this money to correct the fiscal deficit, so that the number also comes down, which is the target the next coming 2 years at a certain level to bring the fiscal deficit. So, and that kind, and basically the money will go to the government, will have a indirect effect on interest rate, because when government will have sufficient money, government will reduce its borrowing from the market. When less borrowers are there, so then definitely interest rate will be softened, and that is good for the interest. The other borrowers will have more space to borrow the money from the market with the available resources.
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज नकारात्मक रुख दिखा गया। पांच में से चार बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। केवल सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स ने मामूली रूप से 0.01% की बढ़त बनाई। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.62% लुढ़क गया। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 1.34% की सुस्ती के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में भी 1.56% की गिरावट दर्ज की गई और जापान का निक्केई सूचकांक 1.30% नीचे आकर बंद हुआ। यूरोप के तीनों प्रमुख स्टॉक शेयर बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक जर्मनी का डेक्स 0.11% के लाभ में था। लंदन का फुटसी 0.26% ऊपर आकर और फ्रांस के कैक 0.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे।
The Wall Street fell on Wednesday amid further gains in Treasury yields and concern over the timing and scale of possible interest rate cuts from the Federal Reserve. The Dow fell more than 1% and hit its lowest level in nearly a month. All of the S&P 500 sectors ended lower as well. Nasdaq lost 0.58%, Dow Jones Industrial Average fell 1% and S&P 500 slipped 0.74%.
S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को फिर से सकारात्मक में संशोधित किया। एजेंसी ने कल अपनी संशोधित रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार चुनाव परिणाम के बिना किसी असर के आर्थिक सुधारों और राजकोषीय नीतियों में व्यापक निरंतरता की उम्मीद जताई गई है। एजेंसी ने 26 सितंबर 2014 से अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर रखा हुआ था। अब 10 वर्षों के अंतराल के बाद इसको सकारात्मक में परिवर्तन कर दिया गया है। सशक्त आर्थिक विकास और सरकारी खर्च की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार, राजकोषीय समेकन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, अगले 3 साल में सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक तौर पर 7% के करीब विस्तार, भारत ने बुनियादी ढांचे संपर्क सुविधा में सुधार, सामान्य सरकारी घाटा वित्तीय वर्ष 2025 में 7.9% से घटकर वित्तीय वर्ष 2028 तक 6.8% तक होने की उम्मीद इसे तर्कसंगत बनाते हैं। हरवीर जी, S&P एजेंसी ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया और जो स्थिति दर्शाई है भारतीय अर्थव्यवस्था की, इस पर आपके क्या विचार हैं?
बहुत ही पॉजिटिव है। देखिए कि 10 साल के बाद इस तरह का रेटिंग वहां से आया है और S&P की रेटिंग को दुनिया भर में बहुत सीरियसली लिया जाता है। ऐसे में जो हमारे जो बोरोइंग्स हो सकती है इंटरेस्ट मार्केट से वो ईज होंगी, उनका उनके ऊपर हमें थोड़ा सा कम रेट पे हासिल हो पाएगा। दूसरे जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ेगा, तो वी कैन गेट ए बेटर फ्लो ऑफ FDI ये इंडियन इकोनॉमी में।
Oil prices are broadly steady in the global crude market. The US data pointing to higher for longer rates were sidelined by inventory numbers displaying strong demand for crude in the US led to a slight decline in the Brent crude price. Brent crude decreased by 0.12% to $83.53 per barrel. The US West Texas Intermediate WTI marginally increased by 0.06% to $79.30 per barrel when reports last came in. Harvey G, what has been India's strategy is that we are completely independent, plus we are bolstered by our domestic production and refining. What do you think India's strategy in the oil markets of importing and then refining the oil has played a positive role for not just the markets but also for economy?
Yes, actually we are one of the biggest importer of crude, but at the same time we also import crude for refining purpose and re-export that refined product to the global market.
Yes, sir.
And our big refinery capacity is playing a very important role for that. Companies, those who are doing all these activities are making profit. And we are a very reliable supplier to many markets in the world.
अरविंद जी, अभी अगर बीते कुछ समय की स्थिति को हम देखें तो ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा एक बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलना है। स्टेबिलिटी नजर आई है, कुछ उतार चढ़ाव देखे गए हैं लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं मिला है, तो इसको आप फायदेमंद मानते हैं भारत के लिए?
देखिए, ऑयल प्राइसेस में स्टेबिलिटी भारत के लिए हमेशा फायदेमंद है, बशर्ते अगर गिरावट आती है तो और ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन वॉलेटिलिटी का ना होना हमारे लिए अच्छा है कि जिससे हम लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बेहतर प्राइस पर हम लोग कर पाए, क्योंकि हम लगातार खरीदार हैं दुनिया के मार्केट में क्रूड ऑयल के और ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए।
और अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का वायदा मूल्य 5 जून के अनुबंध के लिए 0.44% की सुस्ती के साथ 71,875 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया। वहीं चांदी भी आज सुस्त रही और 5 जुलाई के अनुबंध के लिए 1.89% लुढ़क कर ये 94,340 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। हरवीर जी, हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end in red for fifth straight session. Sensex closes at 73,886. Nifty settles at 22,489. Income of Reserve Bank of India surges 17% during 2023-24, says RBI annual report. And S&P outlook on India economy becomes positive after 10 years. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Namaste. Goodbye. Market Mantra.